تفسير. وما كنت بجانب الغربي اذ قدينا الى موسى. اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک، 44 سے 46 تک، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے جو ہے وہ التفات کیا ہے، توجہ کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان مراحل سے، ان واقعات سے، اے محمد تم واقف تو نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات سے واقف کروایا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے. جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر فضل کیا تھا نا، آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی قوم کے درمیان رسول بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی قوم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف جو ہے بلا سکے، ان کی رہنمائی کر سکے. فرمایا وما کنتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، بجانب الغربی مغربی طرف، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے. مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکام دیے گئے تھے، اور یہ علاقہ حجاز کے مغربی جانب واقع ہے. وما کنتا، اور کنتا کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 44 میں اور آگے کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 45 میں، آیت نمبر 46 میں، ان میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں کہی ہیں. اور پہلی بات کیا؟ کہ آپ اس وقت جو ہے مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے، جزیرہ نما سینا کے پہاڑ کے پاس آپ تو نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت دیے گئے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اور آپ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آئے اور آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی معلومات دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے. اس قدینا، جب جو ہے وہ فیصلہ کیا، جب بھیجا ہم نے الى موسیٰ الامرہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم، اور الامرہ جو ہے اس سے مراد ہے رسالت. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ آپ کو رسول بنایا گیا ہے اور آپ فرعون کے دربار میں جائیے. تو معنی کیا ہے؟ کہ اذ قدینا الى موسیٰ الامرہ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے شریعت عطا کیا، جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور اب آپ فرعون کے دربار میں جائیے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے. یعنی شاہدین کون تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، آپ سورت البقرہ میں پڑھ چکی ہیں، تو 70 نمائندے تھے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا گیا تھا. سورت الاعراف کی آیت 155 میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو موجود نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کی نبوت کے لیے ایک گواہی ہیں، یہ ایک دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 45 میں فرمایا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُمْرُ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُمْرُ ولکن پیدا کیا ہم نے قرونن امتیں اور قومیں، اور ہم نے جو ہے کئی امتیں اور قومیں جو تھیں ان کو پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ فتح پاولا، پھر طویل ہو گئی، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. उन पर अल उम्र उमर, तो फिर उन पर जो है एक लंबा जमाना जो है वो गुजर गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर एक लंबा जमाना गुजर गया। तो इससे मुराद क्या है कि यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैगंबर बनाए जाने के बाद और बीच में कई कौमें आई, कई उम्मतें आई, और एक मुद्दत गुजर गई, और आप क्या है कि 2000 साल बाद के जो वाकयात है आप ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे कि आपने आंखों से उसको देखा हो। वलाकिन्ना अंशाना कुरूनन फततावला अलैहिमुल उम्रु, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपका जमाना आने तक हम बहुत सी नस्लों को पैदा कर चुके, बहुत लंबा जमाना गुजर गया। तमा कुंता सावियन फी अहले मदियना तत्लु अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन वमा कुंता सावियन। सावियन जो है, वैसे अगर मैं कहूं कि ये लफ्ज आपने पहले पढ़ा था तो आप कहेंगी कि बड़ा ही अजीब और मुश्किल सा लग रहा है, कहां हमने पहले पढ़ा था, लेकिन मैं आपको जो है वो इसकी विटनेस देती हूँ कि वाकई आपने पढ़ा था। और सावियन जो है इसका रूट है सा वो या, आपने पीछे सूरत यूसुफ में पढ़ा था जब अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी बीवी से कहा था कि इसे बहुत इज्जत से रखना, अकरमी मसवाहू, वहां आपने पढ़ा था इसको, सूरत यूसुफ आयत नंबर 21 में। तो सा वो या जो है ये जविल अजदाद में से है, इसके मानी होते हैं आबाद होना और इसके मानी होते हैं दफन करना। तो जैसे अगर किसी को कोई आबाद हो कहीं रहे तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और दफन वगैरह के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा कि वमा कुंता साबियन, और आप जो थे वो आबाद तो नहीं थे, आप मौजूद तो नहीं थे, फी आले मदियना मदियन के दरमियान, तत्लु अलेहिम आयातिना कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे थे और वहां उनके साथ जो कुछ पेश आया था और उन्होंने वहां पे जो 10 साल गुजारे और जब वहां से रवाना हुए, तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपका कहीं पता नहीं था, आप उस वक्त मदियन की बस्तियों में काम तो नहीं कर रहे थे जो आज आप मक्का की गलियों में कर रहे हैं। तो वो वाकया जो आप बता रहे हैं जो मदियन की गलियों में पेश आए, इसलिए थोड़ी कि आपने उनका ऐनी मुशाहिदा किया था, आप आई विटनेस थे, बल्कि ये इल्म भी हमने आपको वही के जरिए अता किया है। वला किन्ना कुन्ना मुरसलीन, बल्कि उस वक्त ये खबरें भेजने वाले हम हैं, हमने ये खबरें आपको दी हैं। फिर आयत नंबर 46 में एक और दलील है, वमा कुन्ता बिजानिबि तूरी, और आप तूर के दामन में मौजूद नहीं थे, इज ना देना जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था, वला कि रहमत मिन रब्बिका, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत थी, ये तुनजिरा कौमम अताहुम मिन नजीर मिन कब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। तो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा मुकारा था, जब उनको पैगंबर जो है वो बनाया था, तो उस वक्त भी आप मौजूद नहीं थे, तो क्या है ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं। तो ये जितनी ये यहाँ पे तीनों आयतों में जो दलील दलीलें दी गई हैं, ये दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के सबूत में दी गई हैं। अहले मक्का तुले हुए थे इस बात पर कि किसी ना किसी तरह आपको झूठा मुद्दई साबित करें, आपको गैर नबी साबित करें, और वो यहूद के उलमा, ईसाइयों के राहिबों के जरिए मुख्तलिफ ऐसी बातें पेश करते थे कि आप जो हैं वो पैगंबर नहीं है, नबी नहीं है, इतराजात शुभात। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के सबूत के तौर पर ये तीन बातें जो हैं वो पेश की हैं, जो आयत नंबर 44 से लेकर 46 तक है। फिर ये आयत नंबर 46 का जो आखिरी हिस्सा है, तो ये तुम्हारे रब की रहमत है, ये तुनज़िरा ताकि आप डराएं, कौमन एक ऐसी कौम को मुराद है अहले मक्का, कि आप ऐसे लोगों को मुतनब्बे करें, मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका, जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया था, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो लोग जो है वो होश में आ जाएं। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। तकरीबन 2000 साल की तवील मुद्दत में बाहर के अंबिया की जो दावत थी वो वहां तक जरूर पहुंची, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी दावत अरब के इलाके तक तो जरूर पहुंची, लेकिन खास इस इलाके में, इस सरजमीन में कोई दूसरा पैगंबर जो है वो नहीं आया था। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 47 से लेकर 55 तक, 47 से 55, कुरैश की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजजात का मुतालबा है कि कुरैश जो थे वो क्या कहते थे कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को मौजजे दिए गए थे, तो आपको जो है वो अल्लाह मौजजे क्यों नहीं देता अगर आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ये जो इतराजात थे और ये जो मौजजात के मुतालबात थे इसका जवाब दिया है, फरमाया वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा कद्दमत ऐदीहिम फयकूलू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबिया आयातिका वनकूना मिनल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की वजह से कोई मुसीबत जब इन पर आए तो वो कहें कि ऐ परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। अब ये जो है ना, ये जो आयत है, आयत नंबर 47, इसमें दरअसल पैगंबर को भेजे जाने का मकसद बताया जा रहा है कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर ना भेजा जाता तो लोग ये एतराज कर सकते थे। क्या एतराज कर सकते थे? कि यानी लोगों के अमलों की वजह से जब उन पर अल्लाह का अजाब आ जाता तो फिर लोग ये कहते वलौला, और ऐसा क्यों ना हुआ और कहीं ऐसा ना हो, अन तुसीबहुम मुसीबतुन, कि उन पर कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत से मुराद यानी अल्लाह का अजाब आ जाए, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो कुछ उन्होंने करतूत अपने हाथों से आगे भेजे हैं, यानी उनके अमाल के नतीजे में उन पर अल्लाह का अजाब आ जाए। फयकूलु, फिर वो कहने लगे रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूलन, तूने क्यों ना हमारी तरफ रसूल भेजा, तन्नत्ता बिया आयातिका, कि हम तेरी आयात की पैरवी करते, वनकूना मिनल मुमिनीन, और अहले ईमान में से हो जाते। जैसे मसलन किसी तालिबे इल्म को फेल कर दिया जाए, किसी को जॉब से निकाल दिया जाए, तो वो लोग क्या कहते हैं कि आपने फेल करने से पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी रहनुमाई क्यों नहीं की, या हमें जॉब से निकालने से पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं ना। या किसी की पिटाई बच्चे की जाए, वालदा पिटाई करे, वालदेन पिटाई करे, तो बच्चा कहता है कि आपने हमारी गलती क्यों नहीं बताई, आपने क्यों हमारी पिटाई की। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर पैगंबर ना भेजा जाता और लोगों पर अजाब आ जाता तो लोग कहेंगे कि परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हमें वो तेरे बारे में बताता, हम तेरी आयात की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाते। तो लोगों का उजर जो है वो क्या है कि आपने हमें हक और बातिल का फर्क जो है वो समझाया ही नहीं, कोई सही रास्ता बताने वाला आया ही नहीं, कोई नबी आया ही नहीं कि हमें वो हदायत के रास्ते पे चलाता और हम उस पे चलते। तो इस तरह लोग जो है वो उजर पेश करेंगे और कहेंगे कि अगर रसूल आता तो हम तेरी पैरवी, आयात की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में से शामिल हो जाते। फलम्मा जाअहुमुल हक, मगर जब हक उनके पास आ गया, हक से मुराद है किताब, रसूल क्योंकि रसूल क्या लेकर आया, किताब लेकर आया, मिन इंदिना हमारे पास से। मगर जब हमारे पास से हक इनके पास आ गया, कालू वो कहने लगे, लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, क्यों ना इसको वही कुछ जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, क्यों ना इसको दिया गया। तो जब जो है वो रसूल आ गया, हक अल हक रसूल किताब मिन इंदिना हमारे पास से, नहीं जब हमारे पास से हक इनके पास पहुंचा तो लोगों ने कहा लौला ऊतिया, यानी अहले मक्का कहने लगे कि क्यों ना दिया गया मिसला जैसे कि मां ऊतिया मूसा, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो दिया गया था। मुराद क्या है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मौजजात दिए गए थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजजात क्यों नहीं दिए गए। अल्लाह ताला पूछते हैं अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन कब्ल, बड़ा ही अहम सवाल है कि अवलम यकफुरू, क्या और नहीं कुफर किया उन्होंने बिमा ऊतिया मूसा, इसके साथ जो दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को मिन कब्लू, इससे पहले के, क्या ये लोग उन मौजजात का इनकार नहीं कर चुके जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बहुत से मौजजात दिए गए, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या मौजजात देखकर, क्या मौजजात देखकर वो ईमान ले आई थी। तो कुरैश मक्का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन मौजजात की वजह से क्या तुरात पर ईमान रखते हैं? क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजजात दे दिए जाए तो क्या वो ईमान ले आएंगे? तो जब भी कौमों ने मौजजात मांगे और जब पैगंबरों के पास मौजजात आए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनका इनकार ही किया। तो यहां पर भी यही बात है कि अवलम यकफुरु बिमा ऊतिया मूसा मिन कब्लु, क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। कालू, अहले मक्का ने कहा सेहराने तजाहरान, अलिफ के बाद नून तस्मिया का गिर चुका है, सेहराने जो है ये दोनों जादू हैं, और जो दोनों जादू हैं इससे मुराद क्या है, यानी कुरान भी जादू है और तौरात भी जादू है। और किसी ने ये भी कहा कि सेहरान से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम है, कि वो दोनों जो है वो जादू हैं। कौम मूसा ने मूसा और हारून दोनों को साहिर कह दिया, या कुरैश मक्का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों को जादूगर कहते थे। तजाहरान, तजाहरान जो है इसके मानी है कि वो दोनों एक दूसरे के मददगार हुए, एक दूसरे के जो है वो हम पुश्त हुए, एक दूसरे की मुआवनत करते हैं। वकालू, और कहते हैं इन्ना बेकुल्लिन काफिरी काफिरून, और कहते हैं इन्ना बेकुल्लिन काफिरून, कि हम किसी को भी नहीं मानते। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए फातु बे किताब मिन इंदिल्लाही, इनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह की तरफ से कोई किताब, हुआ आहदा मिनहुमा, जो इन दोनों से ज्यादा हदायत देने वाली हो। आहदा ये सम तफजील है, यानी अफालू जो है ना उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर इसका वजन जो है वो मुख्तलिफ है। बाज अल्फाज आप देखेंगी जिनका वजन अफालू का नहीं होता, जैसे खैर है, शर है, सुगरा है, कुबरा है, बाज ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे आहदा है कि जो इन दोनों से ज्यादा हदायत बख्शने वाली हो, मिनहुमा इन दोनों से, अत्तबेहु इन कुंतुम स्वादिकीन, अत्तबेहु मैं इसकी पैरवी करूंगा, इन कुंतुम स्वादिकीन अगर हो तुम सच्चे। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि आप इनसे ये बात कहिए, आप इनसे पूछिए कि चलो तौरात और कुरान के अलावा अगर कोई किताब अल्लाह के पास से तुम ले आओ जो हदायत करने में, हदायत देने में तौरात और कुरान से ज्यादा बेहतर हो, तो मैं इसकी पैरवी करने लगूंगा। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि तौरात और जो कुरान है ये दोनों जादू हैं, ये नऊज बिल्ला दोनों झूठी हैं, और तुम तो हक का इत्तबा करना चाहते हो ना, तुम ले आओ कोई ऐसी किताब तो मैं पैरवी करने लगूंगा। फ़इल्लम यस्तजीबू लका, और अगर ये आपके इस मुतालबे को पूरा ना करें, अगर आपकी इस बात का जवाब ना दें, फालम फसाब जान लीजिए अन्नमा यत्तबिउना अहुआ अहुम। तो आप समझ लीजिए कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। फमन अदल्लू मिम्मा नित्तबा, और उस शख्स से बढ़कर जो है वो गुमराह कौन होगा। अदल्लू जो है ये भी इस्म तफ़सील का सीगा है कि ज्यादा गुमराह, और उस शख्स से बढ़कर ज्यादा गुमराह जो है वो कौन होगा। मिम्मन जो के इत्ताबा पैरवी करे हवाहू अपनी ख्वाहिश नफ्स की, बगैरे हुदम मिन अल्लाह अल्लाह की हदायत के बगैर। उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हदायत के बगैर जो है वो तो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करे। इन अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज हदायत नहीं दिया करता। अब आप देख लें कि यहां पर जो है इसको आप सर्कल कर लें कि इत्ताबा हवा, ये पीछे भी अन्नामा यत्तबेउन अहवा अहम। तो वो लोग क्या करते थे, उनका गुनाह क्या था, अहले मक्का का गुनाह क्या था कि वो अल्लाह की किताब को छोड़कर अपनी ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते थे। तो हक के पैगाम को मानने या ना मानने का जो असल मायार है वो ये है कि पैगाम को खुद इसके जो हर जोहरे जाती की बुनियाद पर जांचा जाए। यानी सदाकत का जवाब सदाकत है। अगर कोई शख्स सदाकत का इनकार कर दे तो उसके जवाब में उसको उससे बेहतर सदाकत को पेश करना चाहिए। अगर वो नहीं पेश कर सकता, इसका ये मतलब है कि इनकार की वजह उसकी ख्वाहिश नफ्स है, ख्वाहिश परस्ती है, तासुब है। और ये लोग जो हैं ये बदतरीन लोग हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक तो हक को ना मानना और दूसरा जो है अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना। और ये लोग क्या करते हैं, अपने ख्वाहिश नफ्स की जो है वो पैरवी करते हैं। तो यहां पर आप ये सोचकर आगे गुजर मत जाएं कि ये अहले मक्का थे और ये जो थे वो लोग थे जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते थे। हैं यहाँ पे आप जरूर अपना मुहासबा करें, जरूर अपना जायजा लें कि अपनी गुजरती हुई जिंदगी में आप क्या करती हैं। क्या आप अल्लाह की किताब जो है उसके मुताबिक चलती हैं, या आप अपनी ख्वाहिश नफ्स जो है उसको अपना खुदा बनाती हैं, आप क्या करती हैं। क्योंकि जिसका कहना माना जाता है उसी की जो है वो अतात की जाती है, उसी की पैरवी की जाती है। और कितनी बातें हैं जो आप अपने दिल की मानती हैं और कितनी बातें हैं जो आप सिर्फ अल्लाह की मानती हैं। और हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम दिया है हमें अपनी अजीम किताब में, अपनी प्यारी किताब में, अपनी खूबसूरत किताब में, तो असल में वो पैगाम जो है उसको हमें अपनी जिंदगी में जो है वो जारी और सारी करना है। तो ये है यहां पर भी, ये खास तौर पर यहाँ पे जिस चीज का जोर दिया जा रहा है और वो है कि जो है कि अल्लाह की किताब की पैरवी की जाए और अल्लाह के रसूल की पैरवी की जाए। इस सिलसिले में मस्तन आप यही देख लें कि शादी ब्याह के मौके पर, बैत के मौके पर क्या आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलती हैं, आप क्या करती हैं। है ना, ये बात जैसे मेकअप करना है तो क्या आप इसमें जो कुरान और सुन्नत की हदायात हैं उसका ख्याल रखती हैं। जैसे जबान की हिफाजत करनी है तो क्या आप उसमें जो है ख्याल रखती हैं कि जबान के कैसे इस्तेमाल से अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है ना। तो एक एक चीज का आप जायजा लें और आप फिर ये देखें कि अमली जिंदगी में मामला और हाल जो है वो कैसा है। मसलन आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए मालदार होने में कोई खतरा नहीं है, और तंदुरुस्ती अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए मालदारी से बेहतर चीज है, और दिल की खुशी और अल्लाह ताला की नेमत है। तो इसका मतलब क्या है कि अमारत जो है वो तकवा के खिलाफ नहीं है। अगर अमीर शख्स जो है वो मुत्तकी है तो क्या करेगा कि ज्यादा माल हासिल करने के लिए जो है वो हराम तो नहीं लेगा ना, या माल की ज्यादती से दुनिया ही नहीं बनाएगा, मुत्तकी है तो आखरत बनाने की कोशिश करेगा, और तंदुरुस्ती है अगर उसके पास तो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह के रास्ते में अपनी जो सेहत है उसको खपाएगा। तो ये असल में एक एक चीज का जायजा लेना और मुहासबा करना जो है इसकी जरूरत है। तो ये लोग क्या करते थे, फरमाया कि अगर वो ये तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। आप इस पे ये बात सुनकर आप अफसरदा हो रही हैं, आप सोच रही हैं कि अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कहा है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है। और आप देखें कि गुजरती हुई जिंदगी में कितनी दफा सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की जाती है, जो जो दिल चाहता है। गलती अपनी है लेकिन लड़ाई कर रहे हैं, पता है कि आपकी गलती है लेकिन माफी नहीं मांगना चाहते, सॉरी नहीं करते, दूसरों को माफ नहीं करते, आजी इंकसारी इख्तियार नहीं करते, और जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है उसको दुरुस्त नहीं करते। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, और क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है जो वक्त है उसको जाया करते चले जाते हैं। तो ये जो ख्वाहिशाते नफ्स हैं वो इंसान को क्या करती हैं, वो इंसान को कुछ भी करने के काबिल नहीं छोड़ती, वो इंसान को गड़े के अंदर जो है वो फेंक देती हैं, इरादे कमजोर हो जाते हैं, सुस्ती काहली गालिब आ जाती है, आज का काम कल पर टालते जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। दुनिया के लिए बड़े दलेर और बहादुर, लेकिन जब बात अल्लाह पर अल्लाह की अताअत की आती है, इस्लाम पर अमल करने की आती है, फिर टाल मटोल ताखीर ताखीर करते हैं और डरपोक हो जाते हैं, और जो है वो सोचते हैं कि ऐसा कर लूं या ऐसा ना करूं पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, और अपनी जात को मुतमिन करने के लिए कोई ना कोई बहाना जो है वो निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि हालात अभी साजगार नहीं हैं, और अगर मैंने ये रवैया जो इस्लाम का ये अख्तियार किया तो फिर तो इसमें बहुत ही जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो असल में जरूरत है इस बात की कि अपने ईमान को जगाया जाए और सुस्ती और काहली को दूर किया जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स को अपने ताबे रखे और मौत के बाद काम आने वाले अमल करे, और आजिज वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग जाए और अल्लाह से भलाई की उम्मीद रखे। अब जरा आप सोच लीजिए कि यानी नफ्स के पीछे लगना, तो ये शख्स कैसा है कि फिर ये शख्स जो है गोया ये तबाह हो गया। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, आप अपनी जात का जायजा लीजिए और आप देखें कि आपके कौन से ऐसे अहम काम हैं जो कि तसाहुल का शिकार हैं, और आप उसकी एक फहरिस्त बनाएं। यहाँ पे ये जो आयत नंबर 50 है ना, इसकी रोशनी में जो है वो होमवर्क है कि जैसे आप अपने जो घर के काम हैं उनकी फहरिस्त बनाएं, जैसे छोटे छोटे काम हैं, जैसे मुरम्मत करने वाला काम है, कोई बटन लगने वाला है, कोई गैर जरूरी सामान है वापस करना है, गाड़ी ठीक करनी है और बिल वगैरह की अदायगी है, या कोई जरूरी ईमेल भेजनी है आपने, या और कोई साजो सामान है घर का जो ठीक होने वाला है और बहुत जरूरी है जिससे पूरा घर मुतासिर हो रहा है, तो उसकी एक फहरिस्त बनाएं। इसी तरह आप जैसे क्लास के जो आपके काम हैं, आपके कौन कौन से अभी पेपर रहते हैं, या अगर आप जॉब करती हैं तो आपकी मीटिंग वगैरह के लिहाज से कौन से अहम काम हैं, है ना। इसी तरह फिर जो है अपनी जात के लिहाज से भी कुछ अहम चीजें हो सकती हैं, आप उसका मुहासबा कर सकती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीजों को सोचते हैं लेकिन वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। जैसे मसलन देखें जात के लिहाज से
एक्सरसाइज करना है, वजन कम करना है, या डॉक्टर की तरफ से कुछ मशवरे हैं, या जाती दिलचस्पी के हवाले से मुताला करना है, या कुरान का आप कोर्स कर रही हैं, सीरत का कोर्स कर रही हैं, कुछ भी हम काम हो सकते हैं। इसी तरह जो है वो रिश्तेदारों के हकूक है, उसमें जैसे जो है वो कुछ फोन करने हैं, आपने ईमेल भेजनी है, खत लिखना है, और कुछ रूठे हुए हैं उनको मनाना है, या कोई डेथ हो गई है ताजियत करनी है, आप किसी वजह से किसी से नाराज हैं, आप गुस्से में हैं, तो आप उनको वजह बताएं ताकि मसला हल हो सके। किसी को तोहफा देना है, कहीं पैदाइश हुई हुई है, कहीं शादी हुई हुई है, तो यानी आप मुख्तलिफ चीजें सोच सकती हैं, क्योंकि गुजरती हुई जिंदगी जो है ये बहुत थोड़ी है। अच्छा, इसी तरह फिर ये भी हमें पता है कि हमारी जिंदगी के कुछ मामलात, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें बहुत ही गलतियां की हुई हैं, उनको ठीक करना है, तो क्या करना है? ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी, और कुरान की हदायत की पैरवी करनी है, और अल्लाह को लोग सख्त नापसंद है जो कि क्या करते हैं, अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। फिर आप देखिए कि सूरत अल कसस आयत नंबर 51, वलकद वसलना लहुम कौला लअल्लहुम यतज़क्करून, फरमाया कि वलकद और तहकीक वसलना, हमने पै दर पै भेजी, लहुम अल कौला इनके लिए बात, और नसीहत की बात पै दर पै हम उन्हें पहुंचा चुके हैं, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो गफलत से बेदार हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जहां तक नसीहत का हक अदा करने का ताल्लुक है, तो हम कुरान में मसलसल बार बार इसे अदा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हदायत नहीं मिलती। हदायत कैसे मिलती है? जो अपने दिल को तासुब से पाक करके सच्चाई को सीधे तरीके से कबूल कर ले। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं। यहाँ इससे मुराद अहले किताब के यहूदी और ईसाई नहीं है, बल्कि ये खास वाक्य की तरफ इशारा है, जिसमें अहले मक्का को जो है वो शर्म दिलानी मकसूद है कि अहले मक्का क्या कर रहे थे कि वो कुरान का इनकार कर रहे थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनकर अहले किताब में से दूर दूर से लोग आकर इस्लाम को कबूल कर रहे थे। तो सीरत इब्ने हिशाम में है कि हिजरत हबशा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और दावत की खबरें हबशा के मुल्क में जब फैली, तो वहां से 20 के करीब ईसाइयों का एक वफद आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, और उन्होंने जो है वो रसूल अल्लाह से कुछ सवाल किए, आपने जवाब दिया, फिर आपने उनको इस्लाम की तरफ दावत दी, कुरान मजीद की आयात इनके सामने पढ़ी, कुरान सुनकर इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, और उन्होंने इसके कलाम अल्लाह होने की तस्दीक की, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो यहाँ पे उनका जिक्र है कि जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, वैजा युतला अलेहिम, और जब इन्हें ये कुरान सुनाया जाता है, कालू वो कहते हैं, आमन्ना बिही इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, कि हम इस पर ईमान ले आए, ये वाकई हक है, इन्ना कुन्ना मिन कब्लिही मुस्लिमीन, और कहते हैं कि वाकई हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं, उलाइका यूतौना अजरहुम मर्रतैन, ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर दो बार दिया जाएगा। अब इनको ये अजर जो है ये दो बार दिया जाएगा, ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोग हैं जिनको दोहरा अजर मिलेगा, इनमें से एक वो है जो अहले किताब में से था और अपने नबी पर ईमान रखता था, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, तो इसको जो है एक अजर मिलेगा हजरत ईसा अलैहि सलाम पर ईमान रखने का, और दूसरा अजर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जो है मिलेगा। तो ये कहते हैं कि हम जो हैं हम ईमान ले आए, तो इन्हें इनका अजर दो बार दिया जाएगा, मर्रतैन, दो बार, एक दफा ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाने का
और दूसरी तरफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। बिमा सबरू, उस सबर पर, उस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई। अब आप देखिए कि यहां पर जो है ये जो ईमान लाने वाले हैं और इनकी जो दीन के दीने हक पर जो साबित कदमी है, इसके औसाफ बताए जा रहे हैं कि पहले ये ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए, फिर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। फिर नंबर दो क्या कहा कि ईमान लाने की वजह क्या है, कि बिमा सबरू, कि ये सबर दिखाते हैं। और सबर की मजीद तफसील है कि वह यद रऊना बिल हसनतिस, हसनतिस से ये आता, बुराई को भलाई से दफा करते हैं। इसके मानी क्या है कि इसके मानी है कि बदी का जवाब बदी से नहीं नेकी से देते हैं, झूठ के मुकाबले में झूठ नहीं सच बोलते हैं, जुल्म को अदल से इंसाफ से दफा करते हैं, शरारतों का जवाब शराफत से देते हैं, ईंट का जवाब जो है वो ईंट से नहीं बल्कि जो है वो मुस्कुराहटों से देते हैं। वयदरा ऊना, और दाल रा हमजा इसका रूट है जिसके मानी है दफा करना, दूर करना, बुराइयों या गलतियों का जवाब जो है वो नेकियों से देना, कि वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं। और ये बड़ा जो है वो ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो इसको इख्तियार करता है तो आप देखती हैं कि जो आपका दुश्मन था वो आपका जिगरी दोस्त जो है वो बन जाता है, यानी बड़ा अच्छा इसका असर होता है। फिर फरमाया, फिर उनकी तीसरी सिफत है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिज्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं, तो राह हक में माली इसार करते हैं। ये नहीं है कि वो बस दुनिया से मोहब्बत करते हैं, तो जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। नंबर चार, वाइजा समय उल्लगवा, और जब वो उन्होंने बेहुदा बात सुनी, आरदू अनहू, तो वो इससे किनारा कश हो गए, वकालू और कहने लगे, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, सलामुन अलैकुम, तुमको सलाम है, ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों का सा तरीका नहीं इख्तियार करते। तो ये जो है ये उन्होंने क्यों कहा, ये जो चौथी बात है आयत नंबर 55 में, कि जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो किनारा कश हो गए। ये जो हबशा से 20 लोगों का वफ्द आया था ईसाइयों का, कुरान सुनकर ये जब मुसलमान हो गए, जब ये रसूल अल्लाह की महफिल से उठकर गए तो अबू जहल और इसके चंद साथियों ने इन लोगों को पकड़ लिया, खूब मलामत की, बड़े नामुराद हो तुम लोग, तुम्हारे हम मजहब लोगों ने हबशा से तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम इस पर ईमान ले आओ, तुम्हें तो इसलिए भेजा था कि तहकीक करो, पता करो कि ये कौन है क्या है, और तुम बैठे और फौरन तुमने जो है वो अपना दीन छोड़कर तुम ईमान ले आए, बड़े ही तुम बेवकूफ हो। अब ईसाइयों को जो है जो मुसलमान हो गए थे उनको खूब मलामत की अबू जहल ने और उनके साथियों ने, तो इन्होंने क्या किया, वाइजा समय लगवा, तो यहाँ पे इशारा है अबू जहल की बातों की तरफ कि उसकी बातों के जवाब में आरदू अनहू, वो इनसे किनारा कश हो गए, अलग हो गए, वकालू और कहने लगे, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे अमाल हमारे लिए, सलामुन अलैकुम, यहाँ पे जो सलाम किया जा रहा है, सलाम से मुराद सलाम तहिया नहीं है जैसे किसी को मिलते हैं तो तोहफातन सलाम करते हैं ना, बल्कि ये सलाम मुतारका है। सलाम तहिया में और सलाम मुतारका में क्या फर्क होता है, सलाम जो तहिया होता है वो कहते हैं जैसे अस्सलाम वालेकुम, कि तुम्हें मेरी तरफ से जो है तुम्हारी जान और माल को अमान है, सलामती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जैसे किसी को जब मिलते हैं तो सलाम करते हैं ना खुशी से और उसको अमन की एक जमानत देते हैं, उसको सलाम तहिया कहते हैं, तोहफा। लेकिन जो सलाम मुतारका होता है इसका मतलब होता है कि किसी को जो है वो किसी से किनारा कशी इख्तियार की जाए, किसी को तर्क कर दिया जाए, मुतारका अलग हो जाना, जैसे कोई जाहिल है, जहालत पे उतर आया है और नाराज हो रहा है, बुरा भला कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो फिर क्या किया जाए कि फिर उससे उलझने की बजाय जो है वो उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको कहते हैं सलामे मतार का, कि अच्छा भाई ठीक है, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम, सलामुन अलैकुम, कि तुमको सलाम है, ला नतकिल जाहिलीन, हम जाहिलों का सा तरीका अख्तियार नहीं करना चाहते। तो क्या करते हैं फिर अच्छे लोग जो मुसलमान होते हैं, वो लड़ाइयां झगड़े नहीं करते, बल्कि जो है वो सलामे मतारका करके बस सलाम करते हैं, बात को समेटते हैं और वहां से जो है वो उठ खड़े होते हैं। ये आयत नंबर जो 56 है, 56, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम को तसल्ली दी गई है और बड़ी उसूली बात कही गई है। उसूली बात का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को ये तालीम दी गई है कि जो अपनी हदायत खुद नहीं चाहते तो आप उन्हें हदायत नहीं दे सकते, और जिन्हें अल्लाह हदायत ना दे तो उन्हें भी जो है वो हदायत नहीं दी जा सकती। इन्ना का ला तहदी मन अहबबता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहदी, आप हदायत नहीं दे सकते, मन अहबबता, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। और कौन थे ये जिनसे रसूल अल्लाह मोहब्बत करते थे? ये थे हजरत अबू तालिब। अबू तालिब जो थे ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये आयत अबू तालिब की वफात के वक्त नाजिल हुई थी। रसूल अल्लाह की दिली ख्वाहिश थी, आप चाहते थे कि हर इंसान जो है वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाए, लेकिन सबसे बढ़कर अगर किसी शख्स का कुफर पर फौत होना आपको अफसुरदा करता था, वो अबू तालिब थे, क्योंकि अबू तालिब से आपको बड़ी ही मोहब्बत थी, आप उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और सबसे ज्यादा किसी शख्स की हदायत के लिए अगर आप आरजूमंद थे तो ये अबू तालिब थे। लेकिन आप मोहब्बत के बावजूद, चाहत के बावजूद और बहुत ख्वाहिश रखने के बावजूद जो है अबू तालिब को हदायत ना दे सके। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि ये आयत रसूल अल्लाह के चचा अबू तालिब के मामले में नाजिल हुई। इनका जब आखिरी वक्त आया तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हद तक इंतहाई कोशिश की कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ले आए, ताकि उनका खात्मा ईमान बिल खैर हो, मगर उन्होंने मिल्लते अब्दुल मुतलिब पर ही जान देने को तरजीह दी। इस हिस्से में मैं आपके सामने ये वाकया रख देती हूँ कि सईद बिन मुसैयब के वालिद मुसैयब कहते हैं कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो आप इनके पास गए, वहां देखा कि अबू जहल अब्दुल्ला बिन उमैया पहले ही बैठे हैं। आपने अबू तालिब से कहा, चचा जान, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लें तो मैं कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ दलील पेश कर सकूंगा। और अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई जो थे कहने लगे, अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुतलिब का दिन छोड़ दोगे? आखिर अबू तालिब ने आखिरी बात जो कही वो ये थी कि मैं अब्दुल मुतलिब के दिन पर मरता हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कबूल ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा जब तक कि इसे मना ना कर दिया जाऊं। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल्मुशरिकीन। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 113 है। नबी और ईमान लाने वालों के लिए ये जायज नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगे। और अबू तालिब के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि इन्नका ला तहदी मन अहबबता, है नबी, तुम जिसे चाहो उसे हदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हदायत कबूल करने वाले हों। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह का पैगंबर भी, यानी जिसे चाहे उसे हदायत नहीं दे सकता। तो किसे अल्लाह हदायत देता है? जो अपनी हदायत खुद चाहते हैं। और इसके ये माने भी हैं कि कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को रिश्तेदारी की बिना पर, कोई दोस्त किसी दोस्त को दोस्ती की बिना पर, कोई चाहने वाला किसी चाहने वाले को चाहत की बिना पर हदायत नहीं दे सकता। दुआ की जा सकती है, ख्वाहिश की जा सकती है, गिरियाजारी की जा सकती है, लेकिन जो है दिए हदायत दी नहीं जा सकती। अब आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, और आपके इस चश्मे फैज से लोग जो थे वो फायदा उठा रहे थे, लेकिन आपके जो रिश्तेदार थे, आपके जो करीबी लोग थे, वो बड़े ही बदनसीब थे कि वो फायदा होने की फायदा उठाने की बजाय जो है वो आपका इनकार कर रहे थे। तो यहां पर भी ये अहम हकीकत जो है वो हमारे सामने आती है कि अल्लाह उसी को हदायत देता है जो अपनी हदायत जो है वो खुद चाहते हैं, और अल्लाह उस वक्त तक किसी को हदायत ही नहीं देता जब तक कि वो अपनी हदायत जो है वो खुद ना चाहे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली दी गई है कि आपका काम पैगाम लोगों को पहुंचाना है, आपके ये इख्तियार में नहीं है, जिसे चाहे आप हदायत दे दें, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ही खूब जानता है कौन हदायत पाने का अहल है, कौन हदायत चाहता है, और जो चाहता होगा अल्लाह जो है उसको हदायत दे देगा। तो प्यारी बहनों, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदार, उनके लिए जरूर दुआ करनी चाहिए, जरूर कोशिशें करनी चाहिए, जरूर दवा करनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो हदायत किसे मिलेगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। वह हुआ आलमु बिल मोहतदीन, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हदायत कबूल करने वाले हैं। वकालू इन नत्तबे इल हुदा मा का नुतखत्तफ मिन अर्दिना। ये जो आयत नंबर 57 है, 57, अब आप देखिए कि यहां से जो है आयत नंबर 56 में तसल्ली दी गई थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, मुसलमानों को, और आयत नंबर 57 इसमें अहले मक्का का एक उजर जो है उसको नकल किया गया है। और फिर आप देखेंगी कि आयत नंबर 61 तक इनके इस उजर का जवाब दिया गया है। इनका उजर क्या था? अहले मक्का ये कहते थे कि अगर हमने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया तो इनकी सियासत, इनकी मईशत जो है ये खत्म हो जाएगी। ये समझते थे कि अगर हमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो हमारी जो तिजारत है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि मक्का बैन अल-अक़वामी तिजारत का एक बड़ा अहम मरकज था। तो ये क्या समझते थे कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हमारा जो दौलत, असर, रसूख जो आज हमें हासिल है ये खत्म हो जाएगा, हम कलमा कबूल करके मक्का की सरजमीन में बेयारो मददगार हो जाएंगे, चील और कव्वे हमारी बोटियां नोच खाएंगे। जैसे आज का मुसलमान ये समझता है कि अगर मैंने इस्लाम को जो है इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो मुआशी खुशहाली खत्म हो जाएगी। लोग समझते हैं ना, सच बोले तो तिजारत नहीं चलेगी, सच बोला तो रिश्ता नहीं होगा, सही उम्र बता दी और सही अपने हाथ हालात बता दिए तो कोई नहीं रिश्ता करेगा। आज भी लोग ये कहते हैं ना, और ये समझते हैं कि झूठ से जो है ना वही हमारा काम चल सकता है, जॉब पे कोई नहीं रखेगा। अगर हमने सच सच बता दिया तो शादी के मौके पे भी डिग्रियां कुछ बताते हैं, जॉब के मौके पे भी बातें कुछ होती हैं, मेल जो लेना देना दिखाते कुछ है और करते कुछ है। और ये जो उजर था ये अहले मक्का भी पेश करते थे। वो कहते थे इन नत्तबे इल हुदा, अगर हमने पैरवी कर ली अल हुदा की, कुरान की, इस्लाम की, माँ का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ, आपके साथ इस हदायत की अगर पैरवी इख्तियार कर ली, मुतखत्तफ, और मुतखत्तफ जो है खा ख्वा फा जो है इसका मतलब होता है कि उचक लेना। जैसे किसी को जो है वो छीन लिया जाए, उचक लिया जाए, तो फिर क्या होगा कि उचक ले जाएंगे मिन अर्दिना अपनी सरजमीन से, कि हमें मक्का की सरजमीन से लोग जो हैं वो उचक कर ले जाएंगे, यानी हमारा असर रसूख खत्म हो जाएगा और हम इस सरजमीन में बेयारो मददगार रह जाएंगे। अब यहां से आप देखिए कि आयत नंबर 57 से इसका जवाब शुरू है इसी आयत से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अवलन अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन, क्या ये वाकया नहीं है कि नुमक्किन के हमने जो है जाए कयाम बनाया लहुम इनके लिए हरमन आमिनन और अमन हरम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर सवाल पूछा है कि क्या हमने इन्हें जगह नहीं दी, अवलम नुमक्किन मकान देना जगह देना, तो क्या हमने इनको जो है जाए कयाम नहीं दिया हरमन आमिनन, हरम को अमन की जगह के तौर पर। तो ये जो हरम में अमन की जगह है जिसको अमन की जगह अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला कहते हैं ये किसने बनाया, ये हम ही ने तो बनाया है, मैंने बनाया है, क्योंकि हरम में जो अमनो अमान मिला है, दुनिया भर की तिजारत वहां पे माल खींचा चला आता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें तुम्हारी तदबीर का कौन सा दखल है। 2500 साल पहले चटियल पहाड़ों के दरमियान एक बियाबो गया वादी में, अल्लाह का एक बंदा अपनी बीवी और एक छोटे से बच्चे को जो लेकर आया था, तो हमने उसको भेजा था, हमने कहा था यहाँ हमारा घर बनाओ और इस घर की तरफ लोगों को दावत दो, तो ये अल्लाह की दीवी बरकत है, तुम्हारा इसमें क्या क्रेडिट है, तुम ये समझते हो कि ये काम तुमने किया है। कहा कि नहीं, क्या ये वाकया नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम के लिए जाए कयाम बना दिया। अवलम नुमक्किल्लहुम हरमन आमिनन युजबा इलेही, जीम बा वो जीम बा या, और इसके मानी होते हैं कि जैसे खींच कर आना, खींचे चले आना, जवाब भी इसी से है ना, जब आप किसी चीज का जवाब देते हैं तो जैसे उसकी तरफ खींच कर जाते हैं, तो जिनकी तरफ खींचे चले जाते हैं युजबा इलेही, ये मजारे मजहूल है, खींचे चले जाते हैं इलेही इनकी तरफ समरातु समरात फल तिजारत कुल्ले शेई इन हर चीज की, हर तरह के समरात इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, रिज़्क़ मिल्लतुन्ना हमारी तरफ से रिज्क के तौर पर, वलाकिन्ना अक्सर हम ला यालमून, मगर अक्सर लोग जो हैं वो इस बात को जानते ही नहीं हैं, अक्सर लोगों को इस बात का शऊर नहीं है, इस बात की समझ नहीं है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इनके उजर का जवाब नंबर एक पहला जवाब दिया है कि ये जो नेमत है, ये जो फल है, ये जो तिजारत है, बदअमनी के माहौल में हरम में रहते हुए जो तुम लोगों को अमन नसीब है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैंने दिया है, हमने दिया है, और तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, तुम जानते नहीं हो। फिर आयत नंबर 58 में 58 सूरत अल-कसस में इनका जो उजर है उसका दूसरा जवाब दिया। उजर क्या था कि अगर हदायत कबूल कर ली तो जमीन से उचक लिए जाएंगे, मुतखत्तफ मिन अर्दिना, और आज का मुसलमान भी यही समझता है। अब अल्लाह ताला फिर और तरह से जवाब दे रहे हैं, वकम अहलकना मिन करियतिम बतिरत मईशतहा, वकम अहलकना मिन करियतिन, और कम जो है, और कितनी ही अहलकना हिलाक कर दी, मिन करियतिन बस्तियां, और कितनी ही ऐसी बस्तियां हमने हिलाक कर दी। बतिरत, बतिरत जो है इसके मानी होते हैं कि जैसे इतराना, फखर करना, गुरूर करना, और कितनी ही ऐसी बस्तियों को हमने हिलाक कर दिया था। वो क्या कर रही थी, बतिरत, वो इतरा रही थी, वो जो है वो फखर का इजहार कर रही थी, मईशतहा, अपनी मईशत पर, अपनी दौलत पर, फतिल का मसा के नहुम, फरमाया फतिल का बस वो मसा के नहुम इनके घर है, वो इनके मस्कन पड़े हैं, लम तुस्कुम मिन बादहिम इल्ला कलीला, जिनमें इनके बाद कम ही कोई बसा है, फकुन्ना नहनुल वारिसीन, आखिरकार हम ही वारिस होकर रह गए। यानी मालत दौलत खुशहाली जो थी उस पर तुम इतरा गए, तुमने समझा कि ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन हमने क्या किया कि फिर हमने इस इतराने की वजह से तुम्हें जो है तबाहो बर्बाद कर दिया। देखिए इतराना, तकबर करना, इसके लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं, और बतरा दूसरा दर्जा है। बतरा का मतलब होता है बा तारा, नेमतों की फरावानी की वजह से बहक जाना, खुशहाली का गलत इस्तेमाल करना, नेमत का गलत इस्तेमाल करना। जैसे अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है तो उस पे जो है नशुक्री करना, तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि कौमों ने अल्लाह की अता करदा नेमतों पर बकीरत मईशा कहा, नशुक्री की, हक से मुंह मोड़ने लगे। जैसे कौमे आद, कौमे समूद, कौमे मदियन, कौमे सबा, कौमे लूत, तो फिर क्या हुआ, फिर उन पर तबाही आ गई, वो हक से बेनियाज हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी गुमराहियों और बदकारियों पर उनको तबाहो बर्बाद कर दिया। तो ऐ अहले मक्का, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बदकारियों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा? और इसी तरह आज के मुसलमान को भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि दौलत पाकर कहीं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं की जा रही। फतिल का मसाकिनहुम, बस ये पड़े हैं इनके घर, ये हैं इनके मस्कन, लम तस तुस्कम मिन बादहिम इल्ला कलीला, जिनमें इनके बाद कम ही कोई बसा है, वकुन्ना नहनुल वारिसीन, आखिरकार हम ही वारिस होकर रह गए। आयत नंबर 59 है, 59 और इनमें इसमें तीसरा जो है उजर का जवाब दिया गया। उजर वही एक है जो आयत नंबर 57 के शुरू में था कि अगर हमने इस हदायत की पैरवी इख्तियार कर ली तो हम जमीन से उचक लिए जाएंगे। जैसे आज का मुसलमान भी सोचता है अगर हम दीन पर चल गए तो तिजारत नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते, रिश्ते नहीं हो सकते, जॉब नहीं मिल सकती, सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, और कोई दोस्त भी नहीं बनाएगा, कोई दोस्त नहीं बनाएगा अगर स्कार्फ ले लिया, सच बोलना शुरू कर दिया, अगर इस कुरान पर चलना शुरू कर दिया, तो ये सोशल लाइफ सारी खत्म हो जाएगी। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अकेले रह जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे। तो आज का मुसलमान भी डरता है। आप अपना अपना मुहासबा करें, अपना अपना जायजा लें कि वो कौन से डर हैं, वो कौन से खौफ हैं जो आपको एक अच्छा मुसलमान बनने नहीं देते, आपको रोक देते हैं, आप अपनी जिंदगी के फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, जबकि आप जानते हैं कि मेरा रब ये कहता है और मेरा रसूल ये कहता है और इस्लाम पर अमल करने का तकाजा ये है। तो आप क्यों इतने डरपोक बन जाते हैं, आप क्यों दलेर नहीं होते, आपके अंदर क्यों एतमाद नहीं आता, क्यों एक खौफ है, क्यों यकीन नहीं है कि मेरा रब जो है मेरी सारी जरूरतों की कफालत करेगा? आप अल्लाह पर ईमान लाकर तो देखें, आप जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करके तो देखें, आप कुरान और सुन्नत पर अमल करके तो देखें, अल्लाह राहें ना खोल दे तो कहना। अल्लाह ताला कहते हैं तू मेरा होकर तो देख, सारी दुनिया तेरी ना कर दूं तो कहना, तू मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, भाग कर तेरी तरफ ना आऊं तो कहना, तू मुझसे मांग कर तो देख, तेरी दुआएं जो है वो कबूल ना कर लूं तो कहना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के हुए ही नहीं, ये दिल जो है वो अल्लाह के आगे झुका ही नहीं। फिर आप देखिए आयत नंबर 59, वमा काना रब्बू का मुहलिकल कुरा, और तेरा रब बस्तियों को हिलाक करने वाला ना था, हत्ता यब असाफी उम्मीहा रसूल यतलू अलेहिम आयातिना, जब तक कि इनके मरकज में एक रसूल ना भेज देता। रसूल का मकसद क्या था? यतलू अलेहिम आयातिना, रसूल भेजने का मकसद जो इनको हमारी आयात सुनाता। वमा कुन्ना मुहलिकल कुरा, और हम बस्तियों को हिलाक करने वाले न थे, इल्ला व आलुहा जालिमून, जब तक कि इनके रहने वाले जालिम ना हो जाएं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात बताई है कि पहले जो कौमें तबाह की तो क्यों तबाह की, कि वो लोग जालिम हो गए थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको तबाह करने से पहले अपने रसूल भेजकर उनको मतनबे किया कि वो गुनाहों को छोड़ दें। अब यही मामला अहले मक्का तुम्हारे साथ भी है, तुम जालिम हुए, मैंने रसूल भेजा। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और अब उन पर ईमान लाने की बजाय तुम्हें अपनी खुशहाली जो है उसको बचाने की फिक्र हो गई है, तुम्हें अपनी तबाही का अंदेशा है। यानी ईमान लाने से तो अमन मिलना था, खुशहाली बढ़नी थी, तिजारत ने फरोख पाना था, और तुम समझ रहे हो कि ईमान लाने से जो है वो नुकसान होगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अजाब कब भेजता है? जब लोग जुल्म करते हैं। फिर आयत नंबर 60 है, और इसमें जो है वो मजीद उसी उजर का जवाब है, और जवाब नंबर 4, वमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयाते दुनिया वजीनतुहा। तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो महज दुनिया की जिंदगी का सामान और इसकी जीनत है। वमा इंदल्लाही खैरुन व अबका अफला ताकिलून। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है और बाकी रहने वाला है, क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला बड़ी अहम हकीकत की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं कि दुनिया की मौजूदा जिंदगी में जो है अगर किसी शख्स को कोई जिंदगी भी मिलती है तो वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए है। जो भी जिंदगी अल्लाह ताला देता है तो वो जिंदगी क्या है? बहुत थोड़ी देर के लिए है। फमताउल हयाती दुनिया वजीनतुहा। तो दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत जो कुछ दी गई है, अल्लाह ताला कहते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है, थोड़ी देर के लिए है। दुनिया बहुत हकीर है, बहुत नापायदार है, बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी है। फिर क्या होना है? इसको खत्म हो जाना है, इसको एक जवाल है। मैं लहलहाती शाख को समझाता जिंदगी, पत्ता गिरा दर से फना दे गया मुझे। दुनिया अगरचे मिल भी गई फिर इसके बाद क्या? शाख शाख पे फूल सजा फिर इसके बाद क्या? वमा इंदल्लाही, और जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुन, वो ज्यादा अच्छा है, वह अबका और बाकी रहने वाला है। अफला ताकिलून, क्या तुमको अकल नहीं आती? तो अल्लाह ताला ये मुतालबा नहीं कर रहे कि इस्लाम पर अमल करना है तो दुनिया छोड़ दी जाए, सिर्फ ये मुतालबा है कि दुनिया पर आखरत को तरजीह दी जाए, क्योंकि दुनिया फानी है और आखरत बाकी। दुनिया का ऐश मुख्तसिर है और आखरत का ऐश जो है वो बेहतर है। दुनिया की जीनत मता जरूर हासिल करनी चाहिए जो आखरत की बाकी रहने वाली जिंदगी में उसे सुरखरू कर दे। यानी दुनिया की कामयाबी के ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि आखरत को भूल दिया जाए या आखरत को कुर्बान कर दिया जाए। तो फिर असल बात जिसका ख्याल रखना है वो क्या है कि दुनिया में रहते हुए आखरत की तैयारी करनी है, दुनिया में रहना है और आखरत में जीना है। दुनिया जो है ऐसे है जैसे कि एक मुसाफिर है और सराय में रहता है और उसको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, और मंजिल है आखिरत। वमा इंदल्लाही खैरुन व अबका अफला ताकिलून। फिर आयत नंबर 61 है, आयत नंबर 61, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कहते हैं कि अफामन, क्या बस वो शख्स वादना हो जिससे हमने वादा किया हो, वादन हसनन अच्छा वादा, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो, फहुआ लाकी ही, और वो उसे पाने वाला भी हो अच्छे वादे को, कमन, क्या वो मानिद हो सकता है उस शख्स के, मत्ता ना हो मताल हयाते दुनिया, जिसे हमने सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सरो सामान दिया हो, थुम्मा हुआ यौमल कयामती मिनल मोहदरीन, फिर वो कयामत के दिन सजा के लिए पेश किया जाने वाला होगा। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस अहम हकीकत की तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि ऐसा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की जिंदगी में नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की जिंदगी में जो है वो उसको अता किया है, और फिर वो क्या करता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उससे अच्छा वादा किया है और वो उसको पाने वाला भी है, कभी उस शख्स की तरह नहीं हो सकता जिसे हमने सिर्फ दुनिया की जिंदगी का साजो सामान दिया हो, और फिर वो कयामत के दिन जो है वो सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो। तो दरअसल इन आयात में जैसे अहले मक्का ये समझते थे ना कि अगर हमने अमल कर लिया तो हमारी दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी और हमारी खुशियां खत्म हो जाएंगी, हमारी दौलत खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसको अल्लाह के यहाँ जो है वो जजा मिलने वाली है, अल्लाह के यहाँ सवाब मिलने वाला है जो हमेशा रहने वाला है, तो वो और जो दुनियादार है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो एक ऐसा शख्स है कि अमन वादनाहु वादन हसनन, उसे अच्छा वादा किया है। कौन सा वादा? जो अल्लाह के पास है कि वमा इंदल्लाह खैर व अबका, जन्नत का वादा, अल्लाह की रजा का वादा। फहुआ लाकी ही, और वो उसे मुलाकात करने वाला है। तो जो ईमान लाता है, अमले सवाले करता है, कुरान पर ईमान लाता है, रसूल का साथ देता है, और फिर उसके साथ वादन हसनन, जन्नत का वादा है और वो उसको मिलने वाला है, वो दुनियादार शख्स की तरह नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है, जिसको दुनिया की जिंदगी का अल्लाह ने साजो सामान दिया है। तो जो शख्स सिर्फ दुनिया का बनकर जीता है, दुनिया के ऐश को आखरत के ऐश पर तरजीह देता है, अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा हुआ यौमल कयामती मिनल मुहदरीन, फिर कयामत के दिन वो सजा के लिए जरूर पेश किया जाने वाला है। आयत नंबर 62 से लेकर 72 तक, वैसे आज हमारा सबक जो है वो आयत नंबर 62 से लेकर 67 तक है, 67 तक। तो यहाँ पर जो है जो शिर्क करने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बताया है कि तुम्हारे बुतों की कुछ भी हकीकत नहीं है। फरमाया व यौमा युनादीहिम, और जिस दिन वो इनको पुकारेंगे, व यौमा युनादीहिम, तो ये वो लोग जो के दुनिया की जिंदगी में शिर्क करते थे, तो वो दिन होगा युनादीहिम के अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको पुकारेंगे। फयकूलू, फिर अल्लाह इनसे पूछेगा अइना शुरका यल्लजीना कुंतुम तज़उमून, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम गुमान रखते थे, यानी तुम जो है वो मेरा इनकार किया, आखरत का इनकार किया, रसूल का इनकार किया, अब वो तुम्हारे माबूद, अब वो तुम्हारे खुदा कहाँ हैं, अब वो लोग जिन्हें तुम मुझे छोड़कर पुकारते थे अब वो कहाँ हैं। तो अब यहां पर जो है अल्लाह ताला उनसे पुकारेगा और उनसे पूछेगा कि अब जिनकी तुम नजरो नियाज देते थे तो अब वो तुम्हें मेरे अजाब से छुड़ाते क्यों नहीं है। अल्लज़ीना कुंतुम तज़मून, जिनका तुम गुमान करते थे। कौल अल्लज़ीना हक्का अलैहिमुल कौलू, ये कौल जिन पर चस्पा होगा, इसके माने क्या है कि वो लोग जो कि दुनिया में सिराते मुस्तकीम को छोड़कर गलत रास्ते पर थे, जो शिर्क करते थे, तो उन पर ये कौल चस्पा हो जाएगा। हक्का अलैहुमुल कौलू, ये बात उन पर जो है वो चस्पा हो जाएगी, यानी अजाबे इलाही के वो मुस्तहिक हो जाएंगे, सर के शयातीन कुफर और शिर्क करने वाले। उस वक्त फिर वो क्या करेंगे? قال الذين حق عليهم القول, वो कहेंगे ربنا, ए हमारे रब, हा उलाई, ये हैं वो लोग, الذين اغوينا, जिन जिनको हमने गुमराह किया था, اغويناهم كما غوينا, इन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए, تبرعنا اليك, हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ما كانوا ايانا يعبدون, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। अब आप देखें, अब वो वहां पे जो है वो इकरार करेंगे कि हम तो थे ही गुमराह, इनको भी अपने साथ गुमराह कर लिया, हमने इन पर कोई जबर तो नहीं किया था, हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी, बस हमने अदना सा इशारा ही तो किया था, हमने तो बुराई की बस दावत दी थी, हमने इनको बुराई की तरफ बुलाया और ये खुद लपक कर बुराई की तरफ आ गए। हमने इनको बेहयाई की दावत दी, ये खुद बेहया बन गए। हमने इनको क्यों खरीदा कि ये बिकने के लिए तैयार थे। तो हमारे जरा से इशारे पर इन्होंने गुमराही इख्तियार कर ली। मैं कानू या नया बुदून, ये हमारी बंदगी तो नहीं करते थे, ये हमारे नहीं अपने नफ्स के बंदे थे, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पूजा की थी। आज हम इनसे जो है वो बेजार हैं, आज इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे शिर्क करने वाले भी और जिनका शिर्क जिनके साथ शिर्क किया जाता रहा, वो सारे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और ऐलान करेंगे मैं कानू या नया बुदून कि ये हमारी बंदगी तो नहीं करते थे। जैसे दुनिया में भी होता है ना, जब मुजरिम पकड़ा जाता है तो और साथ में और लोग भी जो उसके साथी होते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं इनको कहा था, हमने तो बस बताया था, ये तो खुद ही डाके और चोरी में शामिल हो गए, हमने कौन सा इनको मजबूर किया था। वकील शुराकाकुम, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा पुकारो अपने ठहराए हुए शरीकों को। फदउहुम, बस ये उन्हें पुकारेंगे। फलम यस्तजीबू लहुम, वो इनको कोई जवाब ना देंगे। वराउल अजाब, और ये लोग अजाब देख लेंगे। लो अन्नहुम कानू यहतदून, काश ये हदायत इख्तियार कर लेते। तो उस वक्त जो है कहा जाएगा कि अब तुम इनसे मदद तलब करो, जैसे दुनिया में ये तुम्हारी मदद करते थे ना, तो अब इनसे मदद तलब करो। वो पुकारेंगे लेकिन वहां तो किसी को ये जरूरत ही नहीं होगी कि वो कहे कि हाँ अब हम तुम्हारे मुश्किल में तुम्हारी मदद करते हैं, अजाब हटा देते हैं या तुम्हारा अजाब हम अपने जिम्मे ले लेते हैं। तो वहां पे जवाब नहीं देंगे और ये लोग अजाब को खुद देख लेंगे। काश ये हदायत इख्तियार करने वाले बन जाते। وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اس بات کو مت بھولیں کہ جب وہ اللہ ان کو پکارے گا, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, جب وہ ان کو پکارے گا, فَيَقُولُ, اللہ پوچھے گا, مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ, فرمایا فَعَمِيَتْ, عَمِيَتْ جو ہے یہ اندھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, फिर उनको सुझाई ना देगा, बस वो अंधे हो जाएंगे। फअमियत, वो अंधे हो जाएंगे। अलेहिम, इन पर अलंबाऊ खबरों से, उस वक्त कोई जवाब इनको सुझाई ना देगा। जैसे किसी को कुछ नजर नहीं आता ना, तो अब उनको जो है वो जब अल्लाह पूछेंगे तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या जवाब दें। अल्लाह ताला जब पूछेंगे कि जब मेरे रसूल आए थे, मेरा रसूल आया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोगों तुमने क्यों कुफर किया, तुमने क्यों रसूल की जो है वो नाफरमाने की, क्यों अतात ना की, उस वक्त कोई जवाब ना आएगा। यौमाइज़िन फहुम ला यतसाअलून, और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। यतसाअलून जो है इसके मानी है आपस में पूछ गिछ करना। तो आमतौर पर क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से पूछ कर कुछ जवाब जो है वो दे देता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस दिन की दहशत की वजह से, अपने बुरे अमाल की मुजम्मत की वजह से, पछतावे की वजह से, उस वक्त कुछ ना सूझेगा, लोगों में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि एक दूसरे से पूछ पछा कर ही कोई जवाब दे दे। فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, प्यारी बहनों उस दिन कौन कामयाब होगा, वो दिन बड़ा ही सख्त होगा, वो दिन बड़ा ही मुश्किल होगा, वो दिन बड़ा ही तवील होगा, जब अल्लाह पूछेगा कि तुमने मेरे रसूलों की दावत को कबूल क्यों ना किया। आप देखें कि मौत के वक्त भी ये पूछा जाता है, जैसे कब्र में सवाल होता है कि तेरा पैगंबर कौन है, तेरा दीन कौन है। मोमिन तो सही जवाब देता है, काफिर कहता है हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, कोई जवाब समझ में नहीं आता। तो अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ए लोगो अपना होमवर्क कर लो। और होमवर्क क्या है? अल्लाह की अतात और अल्लाह के रसूल की अतात, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। और जो लोग तौबा कर लें, आज जिसने तौबा कर ली, और तौबा के माने क्या है कि गुनाहों की जिंदगी को खुदा हाफिज कह दिया जाए, अपनी मनमानी जो है उसको छोड़ दिया जाए, और अब तक की जिंदगी में जो कहते रहते हैं ना कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, चाहती तो बहुत हूँ और दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन तो अब जो है इन सारी चीजों को छोड़कर जो है वो क्या करें कि एक नेक और बेहतरीन मुसलमान पर जाए, तौबा करें। और तौबा क्या करना है कि अपने गुनाहों से जो है वो माफी मांगे। अल्लाह जानता है, दुनिया नहीं जानती। जैसे इब्ने अकील का जब आखिरी वक्त आया तो उनकी सांस उखड़ने लगी, घर वाले रोने लगे। उन्होंने कहा, 50 साल से लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए मैं फतवे दे रहा हूं, और अब मुझको अमन और चैन से अल्लाह के हुजूर जाने दो। ये कौन लोग थे जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारी, अल्लाह की अतात में गुजारी, और दुनिया से गए तो बड़े पुरसुकून और बड़े ही मुतमईन। और इसी तरह आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम था, और एक दिन की बात है कि उस गुलाम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में कोई खाने की चीज ला कर दी। गुलाम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने जब रखी तो आपने उसको खाना शुरू किया, खा लिया। गुलाम ने अबू बकर से पूछा, आ तदरी मा हाजा, आपको खबर भी है कि ये क्या है जो आपने खाया है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, नहीं मुझे तो नहीं पता। गुलाम ने कहा कि आप तो पूछते थे कि कहां से लेकर आए हो और आज आपने ऐसे ही खा लिया। कहा कि बस भूख लगी थी, तुमने दिया और मैंने खाना शुरू कर दिया। गुलाम ने कहा, कुंतु तकहंतु लिल इंसानी फिल जाहिलिया वमा ओसिनुल किहानता इल्ला अन्नी खदातु फलकियानी फानी बिजालिक फहाज अल्लाजी अकलता मिन। मैंने जमाने जाहिलियत में एक आदमी के लिए कहानत की थी, हालांकि कहानत करने का मुझे ढंग नहीं आता था, बस मैंने उसको काहिन बनकर, काहिन कौन था, जैसे किस्मत का हाल बताना और कुछ बताना कि ये होगा वो होगा, तो मैंने उसे धोखा दिया था। अब जबकि इससे मेरी मुलाकात हुई तो इसने मुझे उसके मुआवजे में कुछ चीज दी जो आपने खाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने अपना हाथ मुंह में दाखिल किया, जो पेट में था उसे कह करके बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि ये थे जो कि सिद्दीक कहलाए। ये कौन थे? जो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की अताअत करते रहे। तो अब आप देखिए, अब आप बताइए कि आप कहाँ पे खड़ी हैं, मैं कहाँ पे खड़ी हूं, हम क्या करते हैं? और ये वो लोग थे जो कि अल्लाह की बंदगी करते थे, ये वो लोग थे जो अल्लाह ताला की अताअत करते थे, है ना, कि पेट के अंदर जा चुका है और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की पकड़ के डर से मुंह के अंदर उंगली डाल डालकर, हलक के अंदर उंगली डालकर जो है उसको तय कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। फम्मा मन ताबा व आमना व अमिला स्वालिहन, अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए। प्यारी बहनों, इन तीनों बातों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। पहली बात यह है कि अब तक की जिंदगी में जो गलतियां हुई हैं, वो गुनाह जो भूल कर किए हैं, जानबूझ कर किए हैं, उसके हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची तौबा करें, सच्ची माफी मांगे। दूसरी बात, हम ईमान लाएं। तीसरी बात, वह अमिला स्वालेहन और नेक अमल करें, स्वाले अमल करें, यानी अब जो हमारी जिंदगी गुजरे तो उसमें जो है वो अमले स्वाले हों। फासा अन यकूना मिनल मुफ्लिहीन, फरमाया वही ये तवक्को कर सकता है कि अब वो फलाह पाने वालों में शामिल हो जाएगा। तो आइए हम अल्लाह के बन जाएं, आइए अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह ताला हमें तकवा की जिंदगी दे, सादत की जिंदगी दे। अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतरीन मुसलमान बनाए। और हम बड़े ही कमजोर हैं, और शैतान जो हमारा असली और अबदी दुश्मन है, उसके वार बड़े ही कारी हैं, बड़े ही सख्त हैं। और हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और ये जो आज के सबक का हासिल है और आज के सबक का निचोड़ है, और वो ये कि हम दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें, ईमान लाएं, अमले सवाले करें, और हम वो काम करें जिससे हमारा रब जो है वो राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।